તારીખ 29/3/1989 શ્રી પ્રવચન સાર ગાથા 144 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન.
કરતા કર્મધિકાર ગાથા 144 વિષય ચલતા હૈ જ્ઞાન લક્ષણ સેવા જ્ઞાન સ્વભાવ આત્મા કા નિશ્ચય કરકે સ્વસ્વરૂપ હોકર કે પુરુષાર્થ અપને સ્વરૂપ કે લક્ષ્ય પૂર્વક કે પુરુષાર્થ મેં अपना स्वरूप आश्रय का पुरुषार्थ होता है. ज्ञान स्वभाव का निश्चय हुआ, उसमें अपने अनंत सामर्थ्य, अनंत ज्ञान और अनंत सुख कितना भी कम क्षम होए फिर भी दो प्रयोजन मुद्दा तो पहचान में आता ही है. एक तो जो ज्ञान का प्रभाव अपने प्रदेश प्रवेश से अनादि से बहता है, इस सतत ज्ञान का प्रभाव के कारण से उसकी अनंतता का अनंतता का अनंत के अनंत सामर्थ्य अनंत है, सामर्थ्य के अनंतता का भास होता है. और ये ज्ञान नियोज में भी प्रचुर कषाय के संयोग में रहा, फिर भी ज्ञान सामान्य तो ज्ञान सामान्य ही रहा, विशेष में कुछ उथल पाथल दिखती है लेकिन सामान्य तत्व तो सामान्य ही रहता है, निर्लेप रहता है. पर पदार्थ के प्रतिबिंब की जहां पहुंच में प्रतिबिंब की भी पहुंच नहीं, पदार्थ की तो पहुंच है ही नहीं लेकिन प्रतिबिंब की भी जहां पहुंच नहीं, ऐसा मेरा निर्लेप निर्विकार स्वभाव अनादि अनंत है. और मेरा ज्ञान की जो उत्पत्ति होती है स्वतः होती है, किसी के कारण से नहीं होती है, किसी के आधार से नहीं होती है. मेरी मौजूदगी अनादि अनंत मेरे कारण से है, इसमें किसी के आधार की कोई अपेक्षा नहीं होती. ऐसा अपना अनंत निरालंबनपना जिसमें किसी का आधार की जरूरत नहीं, ये अनंत काल की दीनता को मिटाने वाला भावभाषण है. संसार में प्राणी को ऐसा लगता है कि मेरी अनुकूलताएं मिल जाएगी तो मैं कितना दुखी हो जाऊंगा, मेरे आजीविका के साधन नहीं रहेंगे तो मैं कितना पराधीन हो जाऊंगा. अलबत्त इस भाव में ही पूरी पराधीनता है कि खान पीन हवा मुझे चलेगा ही नहीं इसके बिना। ये भाव में पूरी पराधीनता है और इसके साधन फिर इसके साधन फिर इसके साधन, ऐसे अनंतों अनंत जो पदार्थ हैं इसकी पराधीनता अभिप्राय में अनंत पराधीनता खड़ी है। इस सभी प्रकार की पराधीनता का अभिप्राय बदल जाता है भाव भाषण से, कि जब मैं निरालंब निरपेक्ष हूं बिना किसी के आधार, मेरे आधार स्वतः मेरे में से मेरे स्वभाव में से ज्ञान का प्रवाह आ रहा है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा अपना एक अनंत सामर्थ्य का आधार भाषित होता है तो दीनता सभी प्रकार की छूट जाती है। इतनी दीनता भरी है कि अनंत दीनता हमारे में है, अगर हमारा निरालंब स्वभाव में ज्ञान में नहीं आया तो हम हमारे जीवन को देखते हैं तो दरिद्रता में दीनता लगती है और थोड़ी भी पूंजी हो जाती है 150 साल के लिए कमाना नहीं पड़े तो कितना पावर आ जाता है कि हमें किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि हमें किसी के पास ऐसा नहीं करना है, हाथ नहीं लंबाना है। 150 साल के लिए भी अगर ये पूंजी हुई तो उतना पावर आ जाता है तो अनंत काल के लिए किसी की जरूरत नहीं हो, ऐसा अपना जो सामर्थ्य है ये भाषित होए तो कितना बल मिलता है परिणाम को, ये तो भाव भाषण से ही पता चलता है। और सबसे ज्यादा परिणाम को भीतर में स्वभाव के प्रति खिंचाव हो जाए, आकर्षण हो जाए, इसका बहुत बड़ा कारण तो यह है कि अनंत सुख का पता चलता है। प्रत्येक जीव की परिणति जो है तो सुख के लिए हमारी मान्यता होती है। जीव का स्वभाव सुख रूप होने से उसे सुख ही चाहिए और संसार में सभी प्राणी कुछ भी करता है तो सुख के लिए करता है। सुख का स्वरूप और सुख का स्थान उसे पता नहीं है, इसलिए इनकी प्रवृत्ति सही रूप में नहीं हो रही है। फिर भी जहां तक सुख नहीं मिलेगा वहां तक एक जीव भी विराम नहीं ले सकता, ये सतत जो भी उसने माना है जाना है अपनी मान्यता के अपनी जानकारी के अनुकूल सुख के लिए पुरुषार्थ करता ही रहता है और उतने हद तक कि कितना भी जोखिम उठाना पड़े, कितना जोखिम उठाते हैं, जान के बाजी लगा देवे अगर सुख मिलता है तो लगा दे के नहीं लगा दे। बड़े बड़े विग्रह होते हैं, लड़ाई होते हैं, क्यों? क्योंकि हमें सुख चाहिए, संपत्ति चाहिए, संपत्ति से सुख मिलता है, ऐसी जानकारी है, ऐसी मान्यता है, इसलिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। इतना अभिप्राय तो पड़ा ही है सभी जीवों में। जब ज्ञान का रूप सुख है ऐसा दिखने में आता है। कैसे? कि ज्ञान के परिचय से, पहचान बिना परिचय होती नहीं। ये सर्व सामान्य सिद्धांत है, किसी की भी पहचान करनी हो बिना परिचय पहचान करने का कोई तरीका नहीं है। एकमात्र प्रोसेस परिचय करना है। तो अंतर अवलोकन में हमारा ज्ञान का परिचय अगर हम करते रहते हैं तो हमें जो ज्ञान सामान्य अभी तक नहीं लक्ष्य में आया, ख्याल में आया, उसका भी हमें परिचय से पहचान होती है और इससे स्वभाव का भी पहचान हो जाता है, क्योंकि दोनों सदृश है। तो उस परिचय में बहुत से मुद्दे जो हैं वो उतने उतने निकलते हैं कि हम निराधार नहीं हैं। हमारा पूरा पूरा आधार अनादि अनंत हमारे में ही है। और ज्ञान में आकुलता का अभाव है, कषाय का अभाव है, मतलब आकुलता का भी अभाव है। स्वभाव से ही ज्ञान निराकुल होने से ज्ञान का रूप जो है वो सुख रूप है। ये ज्ञान का एक दूसरा पहलू है। ज्ञान स्वयं ही सुख रूप है और ऐसा सदृश स्वभाव अनंत सुख की खानी मेरे में ही, मेरा स्वभाव में ही है। ऐसा जब पता चलता है तब यह परिणाम जो है उसकी एक दौड़ इस स्वभाव सुख के प्रति स्वतः उत्पन्न होती है। उसी को हम ये कहेंगे कि एक अंतर्मुख का खिंचाव चालू हो गया। जो अंत तत्व में अनंत सुख भरा है, बेहद सुख भरा है, असीम सुख भरा है, है इतना, इसका है बना जो है उसका विश्वास ये भाववासन के काल में प्रथम नहीं आता है। विश्वास पैदा होता है मेरे में। कब है? कि अब ही मौजूद है, वर्तमान में ही है। अब एक दो दिन का भूखा आदमी को भी मिठाई मिले तो धीरे धीरे नहीं खा सकता, तो जल्द जल्दबाजी कर लेता है ना, क्योंकि इतनी भूख लगी है, इतनी तेज भूख लगी है कि इसमें भी मिठाई सामने आ गई, सूखी रोटी नहीं आई। तो उनके जो परिणाम उस पर टूट पड़ते हैं, क्या होता है कि वो खाने पर, भोजन पर टूट पड़ता है। ऐसे अनादि से सुख से भूखा ये आत्मा है, एक दो दिन से भूखा नहीं है। कब से भूखा है? अनादि से भूखा है। इसकी भूख भी बेहद हो गई है और सामने भोजन भी बेहद पड़ा है, अनंत सुख पड़ा है। जब यही परिस्थिति आमने सामने हो गई तो परिणाम कैसे टूट पड़ेगा इसका अंदाज लगा लेना। हमारे सुख का भंडार भरा है, हमारे में हमारे सुख का भंडार भरा है, कहीं लेने जाना भी नहीं है। तो ये सुख के लिए पुरुषार्थ करने का विकल्प की भी आवश्यकता नहीं है। दिखना चाहिए कि है बस, तो परिणाम है तो दौड़ लगाता है। और जितनी भी महानता है ऐसी अनंत महानता प्रतिभाषित होने से निश्चय की फेर बदली हो जाती है। अनादि से हमारा निश्चय जगत के विभिन्न पदार्थ को महत्ता दे रहा है, जगत में बहुत सी चीजों का महत्व है, उस सब प्रकार की सारे जगत के पदार्थ की महत्ता हम खो बैठते हैं एक स्वरूप के महत्ता भाव भाषित होने से। एक सबसे महत्वपूर्ण जो कोई फेरफार होता है स्टेज में, तो यह होता है कि महत्ता की फिर बदली हुई, जगत इष्ट नहीं आत्म थी। क्या होता है, सारा जगत है एक पल्ले में रखो तरह के, और एक पल्ले में हमारा स्वरूप स्वभाव भजन कहाँ आएगा, कि हमारा पल्ला बैठ जाता है सारे जगत को उछल के फेंक देने के बाद है, उतना वजन आता है। बस जहां वजन है वहां ही परिणति सहज रूप से काम करने लगती है। ये परिणाम स्वभाव है, ऑटोमेटिक है, यहां से ही कर्तृत्व है वो शिथिल हो जाता है। ऐसा महान स्वरूप है और इतनी इसकी महत्ता भाषित होती है, उसी को ही शास्त्र की परिभाषा में ज्ञानियों ने आचार्यों ने निश्चय नय का पक्ष कहा। अनादि से जीव को पर्याय बुद्धि होने से व्यवहार नय के विषय का पक्ष होने से व्यवहार नय के पक्ष में पड़ा है। स्वरूप का प्रतिभास आने से ही पक्ष की फेर बदली हो जाती है, पक्ष पलटू हो जाता है। पक्ष पलटू कहते हैं राजकारण स्वभाव के पक्ष में जीव आ जाता है, उसको निश्चय नय का सही पक्ष कहने में आता है। फिर भी इनका जोर है वो स्वभाव के ऊपर है, इनका जोर पक्ष के ऊपर नहीं है, इसलिए ये पक्ष में रहने वाला नहीं है। गुरुदेव का 314 का वचनामृत है, इस विषय जिसने एक बार भी प्रसन्न चित्त से चैतन्य स्वभाव को लक्ष्यगत किया, स्वयं सन्मुख हो करके ज्ञान स्वयं का वेदन को ग्रहण करता है, तो सन्मुख होना ही पड़ता है। चैतन्य स्वभाव लक्ष्यगत किया, वह जीव अवश्य ही निर्वाण का पात्र है। क्या कहा, निर्वाण का पात्र है, सम्यक दर्शन का पात्र है, ऐसा नहीं कह दिया। देखिए आवश्यकता कहने की नहीं है कि सम्यक दर्शन के लेकर के ऊपर ऊपर की सभी अवस्था कई पात्रता में आई गई। जिस पुरुष को निश्चय का पक्ष हुआ, निश्चय स्वभाव का पक्ष हुआ, जो निश्चय नहीं का विषयभूत है, इसलिए उसको निश्चय का पक्ष कहते हैं। अभी तो पक्ष में है, पक्षांतिकरण तो बाद में होने वाला है। जिस पुरुष को निश्चय का पक्ष हुआ, उसको भले ही अभी अनुभव नहीं हुआ हो, पर उसका वीर्य चैतन्य स्वभाव की ओर ढल रहा है, ये पुरुषार्थ के परिणाम है। अंतर्मुखी पुरुषार्थ का धर्म जो है वो चालू हो गया। पुरुषार्थ तो नहीं है ऐसा कभी तो बनता ही नहीं, क्योंकि वीर गुण का परिणाम कब नहीं होता, कि सभी गुणों का परिणाम अनादि, परिणाम अनादि अनंत है, तो वीर गुण का भी परिणाम अनादि अनंत ही होता है। लेकिन दिशा उल्टी है तो अन्य पदार्थ के प्रति पुरुषार्थ लगता है, और जब हमारी महत्ता हमें भाषित होती है तो पुरुषार्थ की दिशा बदलती है, उसका वीर्य चैतन्य स्वभाव की ओर ढल रहा है। यही स्वभाव है, यही स्वभाव है, ऐसी स्वभाव सन्मुखता में ही जोर होने से वैभव अवश्य अनुभव करके केवल ज्ञान पाएगा ही, अनुभव पाएगा ही, अनुभव करके केवल ज्ञान पाएगा ही। 314 नंबर में गुरुदेव ने जिसको लक्ष्य हुआ, लक्ष्यगत स्वभाव हुआ, ये प्रश्न चलता है इस विषय में बार बार, कि ये लक्षण पर्याय में है तो पर्याय में लक्षण है उसी, यहां से हमें पता चला। पर हमारी अनादि से आधार बुद्धि भी वहां है हमारी पर्याय पर, तो इसे तो हमें मिटानी है, पर यहां से ये बात क्यों चालू होती है, ये लक्ष्य लक्षण वाली, तो उसमें वास्तव में क्या बनता है, कि जब लक्षण पर से लक्ष्य के प्रति ज्ञान चला जाता है, कि जैसा ये लक्षण है वैसा भीतर में अनंत स्वभाव पड़ा है, तब ये अनंत स्वभाव की महत्ता इतनी आती है कि सारा जगत गौण होता है, उतना ही नहीं लक्षण भी गौण हो जाता है। क्या लक्ष्य इतना महान है और महानता की इतनी मुख्यता आती है कि सारा जगत तो हमने हमारे लक्ष्य में से हटा दिया, लेकिन लक्षण भी गौण हो गया कि जिसके माध्यम से हमने लक्ष्य को पिछाना, यही एक वास्तविक परिस्थिति वहां पैदा होती है। इसलिए लक्ष्य में पर्याय गौण हो जाती है, और जिस लक्षण में स्वभाव अंश खुला है उसमें पर्यायत्व नहीं है, उसमें कोई भेद नहीं है। पर्यायत्व क्या, पर्याय का भेद तो नहीं है, कोई भी भेद नहीं है, न गुण का न द्रव्य का। इसलिए पर्याय की फिर चिंता नहीं है कि ये पर्याय में है तो क्या हम हाथ रुके हुए हैं और रुक जाएंगे, ऐसा अंदेशा नहीं होना चाहिए, ऐसी शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो स्वभाव इतना महान है, इतना महान है कि इसकी महत्ता में सभी गुण हो जाता है। त्रिकाली के आगे एक समय का कोई कुछ मूल्य ही नहीं रहता है, पर वहां से ये भाव पैदा होता है कि भले ही एक समय की पर्याय में केवल ज्ञान हो, हमें कोई दरकार नहीं है, क्योंकि एक समय की पूर्ण पर्याय से भी अनंत गुण जिसका स्वरूप है वैसा मैं हूं ऐसा आया है, तो वहां अपनापन आता है, अपने रूप में ये भाषित होता है, तो फिर इसका लक्ष्य छूटना भी असंभव हो जाता है। ऐसा होने पर ये इस मुमुक्षु जीव को तत्वज्ञान विषय प्रवृत्ति कैसी होती है, इसके पहले भी होती थी अब भी होगी, तो ये क्या फर्क हुआ इसमें, इसके लिए एक बहुत सुंदर बात गुरुदेव के वचनामृत में, वचनामृत 359 में बहुत सुंदर बात आती है। गुरुदेव कहते हैं कि मैं पूर्णानंद का नाथ ज्ञायक प्रभु हूं, ऐसा नायक के लक्ष्य से जीव सुनता है तो इस ढंग से सुनता है, क्या है तो उसको भी प्रवचन सुनने की प्रवृत्ति रहेगी। कैसे सुनेगा वो कि मैं पूर्णानंद का नाथ ज्ञायक प्रभु हूं, उसी लक्ष्य से ये सुनता है, उसे सुनते हुए भी ज्ञायक का ही लक्ष्य रहता है, लक्ष्य छूटता नहीं है। मैं सुनने वाला हूं या मैं सुनाने वाला हूं वो लक्ष्य में नहीं रहता, लक्ष्य में तो मैं पूर्णानंद का नाथ ज्ञायक प्रभु हूं, ऐसा ही लक्ष्य रहता है। उसे चिंतमन में भी चिंतमन के भी प्रवृत्ति चलेगी, ऐसा है कि जहां रुचि है यही विषय की जागृति रहती है। रुचि किसकी होती है, जिसकी जरूरत होती है। रुचि का संबंध जरूरत से है, सुख की जरूरत है तो जहां गलत निश्चय हुआ उसी पदार्थ की रुचि रहेगी, उसी पदार्थ का चिंतमन रहेगा। चिंतमन करना नहीं पड़ता, चलता ही रहता है, लेकिन किस पदार्थ का, कि जिस पदार्थ में हमें सुख का निश्चय हो और जिस पदार्थ की हमें रुचि और जरूरत हो। अब हमें पता चल गया कि हमारा सुख की जरूरत है, हमारा सुख हमारे में भरा हुआ है, तो हमारी रुचि उसी ओर की रहेगी, सहज चिंतन उसी का ही चलेगा। खाते पीते चलते हिलते फिरते सोते बैठते जिसकी रुचि होती है, उसकी जागृति रहती है, जिसकी जागृति रहती है उसी का ही चिंतन चलता है। इस विषय में सोबानी जी ने बहुत सुंदर शब्द में ये बात कही है। ये सोबानी जी के वचनामृत 251 आत्म प्राप्ति कैसे होए, यही प्रश्न का उत्तर देते हैं सुनाने जी कि खरेखर अपनी जरूरत लगे, रुचि में खरेखर अपनी जरूरत लगे तब अपनी वस्तु की प्राप्ति में बिना रहे ही नहीं। 2400 घंटों निरंतर कहते हैं क्या, परिणति तो निरंतर रहती है, उपयोग बदलता है लेकिन परिणति तो निरंतर रहती है। 2400 घंटों चिंतन में बेचिंतन में एक यही स्वरूप का गोलन चलता रहता है, गोलन चलता है, घूटती है चीज के घूटन चलती है। छुप नहीं सकता लक्ष्मण से। इतनी महान चीज है, इतना वजन पड़ गया परिणति पर कि परिणति को इससे दबना पड़ता है। जिस वैसे ही संसार में जिस विषय की रुचि होती है उस विषय सैकड़ों बाह्य कार्य करते हुए भी चलता ही रहता है। ये श्वेतांबर के बहुत सूक्ष्म वाले उपाध्याय उसमें एक पद आता है, ऐसा पद आता है मन महिलानु वाला ऊपरे बीजा काम करंत। क्या होता है? स्त्री के परिणाम को दिखाया कि स्त्री का परिणाम कैसा रहता है, कि उस घर के बहुत से काम करती है, करना पड़ता है, उसको रसोई करना पड़ता है, पानी भरना पड़ता है, बासन साफ करता है, घर साफ करती है, कपड़ा धोती है, अनेक प्रकार के घर के काम तो करना पड़ता है, लेकिन उसका लक्ष्य कहाँ है? मन में लानू वाला ऊपरे बीजा काम करंत। दूसरे दूसरे काम करते हुए भी इसका मन तो एक ही जगह लगा रहता है, दूसरे जगह इसका मन कभी नहीं लगता। तेव सुत धर्म में मन दृढ़ रहे ज्ञान क्षेपकवंत। ऐसे जिसको रुचि हो गई अपने स्वरूप की, तो दूसरा दूसरा कितना भी काम करता है उपयोग भी जाता है, लेकिन इसकी जो परिणति है उसका लक्ष्य है वो एक ही जगह रहता है, दूसरा जगह नहीं रहता है। जैसे स्त्री को अपने पति में सुख है, वैसे ये भी परिणति को अपना धनी मिल गया तो उसका लक्ष्य और दूसरी जगह जाने वाला नहीं है। ऐसे कहते हैं कि जिस विषय की रुचि होती है उस विषय सैकड़ों बाह्य कार्य करते हुए भी भीतर में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। बाहर का उपयोग ऊपरी ऊपरी चलता है, बाहर उपयोग जाता है। अरे प्रश्न हुआ था तो उपयोग तो जाता है नहीं, मैं भैयाओं उपयोग ऊपरी ऊपरी जाता है, बिना लक्ष्य ये उपयोग जाता है। लक्ष्य और जगह है, उपयोग और जगह है। बाहर का उपयोग यही दृष्टांत है, ये महिला का दृष्टांत दिया करेंगे, यही दृष्टांत है कि वो रसोई बनाती है, जहां नमक डालना है वहां चीनी नहीं डाल देती, पर चाय में नमक नहीं डालती, चाय बनाती है, दोनों सफेद है, एक सरीखे दिखते हैं, और इसका उपयोग भी ऊपर ऊपर ऊपरी ऊपरी चलता है तो भी गलती नहीं होती। क्या कहते हैं? ऊपर ऊपर के उपयोग से बहुत काम होता है, जरूरत नहीं है पूरा का पूरा अनुभव। उपयोग लगाकर हम पूरे के पूरे डूब जाते हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। बाह्य कार्य ऊपरी ऊपरी उपयोग से होता जाता है, ये हमारे संसार का प्रसिद्ध दृष्टांत है। जैसे कोई ऐसे लक्ष्य वाला जीव हो, तो दुकान में हिसाब किताब लगता हो, अकाउंट लिखता हो, जोड़ लगाता हो, क्या इसमें जोड़ में गलती हो जाती है क्या? नहीं, लक्ष्य चलता है वहां, ये ऊपरी उपयोग से काम होता है। ऐसा होता है, हो सकता है, इतनी ताकत है परिणाम। बहुत विचार चलते कि नहीं, लिखते लिखते दुनिया का तो दुनिया भर का तो विचार चलता है, वैसे ही एक काम करते दूसरा विचार तो चलता ही है, वही काम का विचार चलता है, ऐसा नहीं बनता।
ये व्यापारी का तो दृष्टांत प्रसिद्ध है, उनका सर्वस्व उनके व्यवसाय में है, यहाँ से उसको संपत्ति पैदा करनी है, कितनी अनंत है, किसी को लिमिट? राजू भाई लिमिट रखी कि नहीं रखी?
संसार में बहुत चतुर है, संसार के कामों में बहुत चतुर है, अपने काम में चतुर है।
तो वो खाता है, पीता है, बैठता है, सोता है, यही चलता रहता है। तो उसको जहाँ भी अपना ध्येय है और ध्येय के प्रति जो लगन है, यही चलता रहेगा, क्योंकि जरूरत है, उसकी रुचि है, उसकी जरूरत है। बाहर का उपयोग ऊपरी ऊपरी चलता है, ऊपरी ऊपरी चलता है, इसका मतलब क्या? कि उसमें जागृति नहीं होती। क्या मतलब? उसमें जागृति नहीं, सावधानी नहीं। जागृति जहां रुचि है, जहां लक्ष्य है, वहां जागृति रहती है। इसके द्वारा ऊपरी ऊपरी उपयोग से जो काम होता है, उसमें जागृति नहीं रहती, उसमें जागृति नहीं होती। जिस विषय की रुचि है, उसमें ही जागृति रहती है। सैकड़ों कार्य करते रहने पर भी, सैकड़ों कार्य करने में आ एक दो नहीं, फिर भी जागृति तो जहां लक्ष्य है, जहां रुचि है, उसकी रहती है। ये सबकी गौणता ही रहा करती है, और रुचि का विषय ही सदा मुख्य रहता है। ये हालत लक्ष्य बनने पर, लक्ष्य स्वरूप का हो जाने पर, निश्चय के काल से शुरू होता है। निश्चय लक्ष्य में के पक्ष वालों को गुरु क्या कहते हैं आगे जाकर के, कि उसे चिंतन में भी ऐसा जोर रहता है कि मैं परिपूर्ण ज्ञायक वस्तु हूं, उस जीव को सम्यक सन्मुखता हो जाती है। सम्यक सन्मुखता रहती है। सम्यक सन्मुखता क्या? कि सम्यक दर्शन के वो समीप हो गया, सन्मुख हो गया, मैंने समीप हो गया। अभी उनको सम्यक दर्शन होने में देरी नहीं लगेगी। ये बात आचार्य अमृत चंद्र जी ने अपने तौतेरवी गाथा की टीका में कही है कि जिस जीव को ऐसा निश्चय हुआ, वहां भी निरालंब बना लिया है, ऐसा दृष्टांत लिया है कि जैसा विश्व में ये आकाश है अनादि अनंत, अनंत अनंत क्षेत्र में, अनंत अनंत दसों दिशा में अनंत है, चार दिशा, चार दिशा ऊपर नीचे, दसों दिशा में उतना अनंत 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 क्षेत्र है, तो उस पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ का आधार मिले वो कोई अवकाश नहीं है, कहीं भी अवकाश नहीं आगे जाकर। ऐसा आकाश की तरह मैं निरालंब पदार्थ हूं विश्व में, मेरे किसी का आधार की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा निर्विकल्प तत्व जिसके लक्ष्य में आता है, ज्ञान में भाषित होता है, उसी को निर्विकल्प अवस्था होने का काल पक गया, कालवृत्ति से इसको कहते हैं, कि गुरुदेव के शब्द है उसी टीका के प्रवचन पर, कि उसको निर्विकल्प होने का काल पक गया। कोई कहे कि आपका काल पक गया तो झंझनाटे तो आनी चाहिए, अरे मेरा काल पक गया, संसार मेरा खत्म, के खत्म तेरा संसार, तेरा संसार खत्म, मेरा तेरा अनंत दुख भी खत्म, अनंत सुख की प्राप्ति अल्प काल में हो जाएगी, निश्चित रूप से हो जाएगी। तो वहां आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर बात लिखी है, कि उसके विकल्प शीघ्र ही वमन हो जाएंगे, जैसे कोई पदार्थ बहुत रुचि से खाया, खीर खाते हैं ना, बहुत रुचि से खा गए, हजम करने की ताकत से डबल भी खा लेता है, तो फिर ये धनी है, मकान मालिक है, वो तो प्रमाणिक है, ज्यादा किसी का लेता नहीं है। तो जो नीचे पड़ी है पेट में, उसको फेंकता है बाहर, जोर से फेंकता है, धीरे से नहीं आती बाहर। खाई हुई खीर कैसे बाहर आती है? जोर से बाहर आती है और बेस्वाद हो जाती है। भीतर में गई, कई प्रकार के एसिड वगैरह इसमें मिल गए, जोर से बाहर आती है। वो उसको खाना तो नहीं चाहेगा, देखना भी नहीं चाहेगा। ऐसे जोर से वमन होता है, इसी विकल्प का वमन हो जाता है, ऐसा शब्द प्रयोग किया है। विकल्प को छोड़ना नहीं पड़ता, तोड़ना नहीं पड़ता, रखना चाहे तो रख नहीं सकते, खीर को जैसे नहीं रख सकते वैसे विकल्प को भी नहीं रख सकते। विकल्प का शीघ्र ही वमन हो जाता है, ऐसा सब पड़ा है टीका। ये हालत बन जाती है बहुत स्वाभाविक रूप से। उस जीव को सम्यक सन्मुखता रहती है, मंथन में भी ज्ञायक ही का लक्ष्य रहता है। यह चैतन्य स्वभाव परिपूर्ण वस्तु में हूं, ऐसा उसे जोर रहता है, परिणमन में ऐसा जोर रहता है, भले ही उसे अभी सम्यक दर्शन न हुआ हो। जितना कारण पुरुषार्थ करना चाहिए, होना चाहिए, उतना पुरुषार्थ अभी नहीं उस मात्रा में चलता हो, फिर भी उसे जोर तो है ही, कुछ मात्रा में तो जोर है ही, तो भी उस जीव को सम्यक सन्मुखता होती है। ऐसे जीव को अंतर में ऐसी लगन होती है कि मैं जगत का साक्षी हूँ, जगत का ज्ञायक हूँ, इस जगत में किसी पदार्थ से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मैं निरालंब निरपेक्ष, मेरा अनंत गुण संपत्ति से भरा हुआ पदार्थ हूं। अंतर में ऐसे दृढ़ संस्कार उस वक्त पड़ जाते हैं, ये भाव भाषण के काल देखो ना, संस्कार के बाद मैंने ली है। उन अंतर में ऐसा दृढ़ संस्कार पड़ जाते हैं कि जो फिर अनंत काल में कभी न बदले। ये बीज ऐसा है कि कभी निर्बीज होता नहीं, उसमें से अल्पकाल में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का दो अंकुर फूटने वाले हैं, ऐसा ये बीज भीतर पड़ जाता है। जैसे सम्यक दर्शन होने पर अप्रचलित भाव बतलाया है, वैसे ही सम्यक सन्मुखता में दृढ़ संस्कार होता है, जो है प्रतिहत होता है, कभी नाश होता नहीं, कि उस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति निश्चित ही है। ये बात गुरुदेव ने अपने वचनामृत में कही। ऐसा निश्चय करके क्या कहते हैं आचार्य भगवान? निश्चय मतलब यही परिस्थिति अपूर्व परिस्थिति है, उसको अपूर्वता कहते हैं, ये अपूर्व निश्चय है, अपूर्व महिमा है, अपूर्व भावना है, अपूर्व पुरुषार्थ है, और फिर आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि के लिए क्या होता है कि जो बुद्धि पर पदार्थ की प्रसिद्धि के कारण बुद्ध इंद्रिय द्वारा और मन के द्वारा प्रवर्तमान होती थी वो मर्यादा में आ जाती है। मर्यादा में आ जाती है इसका मतलब क्या है कि उसका जोर है वो इंद्रिय द्वार में खत्म हो गया, मर्यादित हो गया, लिमिटेड हो गया, ऊपरी ऊपरी चलता है। और बार बार ये जो भार जाता है उपयोग पर पदार्थ का अनुभव करता है, ऐसा भी आभास पूरा नहीं गया क्योंकि अभी समय दर्शन नहीं हुआ, लेकिन जागृति अपने रुचि के पदार्थ में है तो वहां से जोर से वो उधर आता है कि अरे मैं तो ये हूं, ये क्या हो गया, मैं तो ये हूं, ऐसा बार बार वो छिटकता है। जहां भी उपयोग जाता है बार बार उस वहां से छिटक करके अपनी ओर आता है कि मैं तो ये हूं, मैं तो ये हूं। ये सब विकल्प नहीं है, पदार्थ ग्रहण है, जागृति है। जागृति में क्या होता है कि पदार्थ ग्रहण होता है, विचार और विकल्प में जागृति नहीं है तो ये तर्कणा चलती है विचार विकल्प वाली, लेकिन उसमें पदार्थ ग्रहण नहीं है। और जिस पदार्थ जिस लक्ष्य में आ गया तो रुचि पूर्वक जागृति पूर्वक पदार्थ ग्रहण होता है, मैं ये हूं। विकल्प में काल में कोरा विकल्प नहीं है, यही अंतर है लक्ष्य होने के बाद में और पहले के परिणाम में। पहले के परिणाम में से विकल्प हो सकता है लेकिन ग्रहण नहीं। इधर विकल्प के साथ एक मुद्दा और है कि वहां ग्रहण होता है कि मैं ये हूं।
304
में ये बात है, गुरुदेव के वचनामृत में ये बात 304 में आई है कि इस वस्तु के लिए प्रयोग करने हेतु ये प्रयोग, जब से वो प्रयोग कहलाने में आता है, अंतर में मूल से पुरुषार्थ का उफान जाना, उफान आना चाहिए। पुरुषार्थ समेत प्रयोग होता है, सिर्फ विकल्प नहीं होता है, विकल्प के साथ साथ स्वरूप ग्रहण का एक प्रयोग होता है जो पुरुषार्थ के उत्थान के साथ होता है, उफान के साथ होता है। ऐसा उफान आना चाहिए कि मैं ऐसा महान पदार्थ, मैं ऐसा महान पदार्थ, ऐसा जोर, ऐसा पुरुषार्थ प्रयोग में चलता रहता है, ऐसा ही निरालंबन रूप से ये पुरुषार्थ कैसे चलता है, किसी का आधार नहीं, न वहां देव का आधार है, गुरु का आधार है, गुरु का उपदेश का आधार है, कोई नहीं। गुरु ने जब ये बात कही थी तब कही थी, सीखते वक्त मैंने मानी कि साहब आप कहते हैं तो मैं मानता हूं, लेकिन अब आप कहते हैं इसलिए मैं नहीं मानता। क्या हो गया, पहले तो कहा कि आप कहते थे इसलिए मानता हूं, लेकिन जब चीज मेरे स्वयं के ज्ञान में प्रतिभास हो गई इसलिए अब तो मैं कहता हूं कि मैं ऐसा महान पदार्थ हूं, आप कहते हैं इसलिए नहीं, मेरी मानता भाषित होती है इसलिए मैं महान हूं। ये इतना अंतर पड़ जाता है, इसलिए कहते हैं कि ऐसे निरालंबन रूप से, किसका आलंबन नहीं, कि गुरु का, गुरु उपदेश का तो नहीं, किंतु ऐसा राग हुआ इसका भी नहीं, ये स्वभाव के प्रति विकल्प हुआ, इसलिए इस विकल्प का आधार से भी मेरा परिणाम नहीं चल रहा है, मेरा पुरुषार्थ नहीं, मेरा पुरुषार्थ का उत्थान बिल्कुल निरालंब है, एक स्वावलंबन में है। न राग का विकल्प का अवलंबन है, न पूर्व पर्याय के पुरुषार्थ का भी अवलंबन है, अपनी पूर्व पर्याय का भी नहीं, एक स्वरूप का आलंबन है जिसमें, उसको निरालंब कहते हैं। ऐसे निरालंबन रूप से अन्य के आधार बिना विचार की धुन चलते चलते क्या कहा यहां, अब विकल्प शब्द बदल दिया, धुन चलती है इसकी, परमचंद जी धुन चलती है, इन आदमियों की प्रकृति धुन वाली होती है, उसको धुन समझ में आती है कि धुन कैसी चीज है, तो वो जो करना चाहता है हर हालत में वो करना चाहता है, सभी प्रकार की प्रतिकूलताएं गौण हो जाया करती है, प्रतिकूलता का दुख महसूस नहीं होता, लोग प्रतिकूलता के आगे हार जाते हैं, ये धुनी आदमी कभी नहीं हारता। अगर ये धुन स्वभाव के प्रति लग जाए तो सम्यक दर्शन पाना बहुत आसान है, विषय बदलना है, बाहरी कार्यों में जो धुन होती है गुण अच्छा है, गुण अच्छा है, धुन का गुण अच्छा है प्रयोजन की सिद्धि के लिए, तो सही दिशा में इसका प्रयोग हो, सफलता अनिवार्य है, आयुर्वेद ही आयुर्वेद। हमारे सुभाष जी साहब भी बहुत धुनी थे, वो तो पता चल जाता है, हमने पूछे उनके परिवार को, परिवार में किसी को पहचान नहीं हुई, तो हमने उनसे कभी ये पूछा कि भले ही आप लोगों को पहचान नहीं हुई लेकिन कोई प्रयोग तो हुआ होगा कि ये कैसा आदमी है, वैसे सामान्य जैसा है वैसा तो नहीं है, उसका घर में भी ढंग तो थोड़ा बदल ही जाता है, तो उन लोगों को यही इंप्रेशन रही क्या साथ थी, धुन ही है, अपने धुन में रहते हैं, किसी की सुनते नहीं, धुनी है बस। तो ऐसी एक सोहरा स्वभाव लक्ष्य में आने पर, निश्चय में आने पर, किसी को ही निश्चय कहते हैं, बड़ा निश्चय निश्चय नहीं, इसकी धुन रहती है, धुन छूटती नहीं है, ऐसी धुन रहती है कि धुन चलते चलते ऐसा आए धुन में कि बाह्य व्यापार न सहाय, किसी भी प्रकार के बाह्य कार्यों के जो भी परिणाम होते हैं लगते हैं और उपयोग उसको सुहाता नहीं है, उसको विक्षेप सा लगता है कि ये विक्षेप मुझे नहीं चाहिए, वो तो उतने धुन में रहते थे कि आर्थिक स्थिति बहुत उन दिनों में कमजोर होने पर भी वो कब बाजार में जाए उसका पता नहीं, अपनी धुन में आवे तब जाए, कभी कभी तो दिन में आधा दिन निकल जाने के बाद हो जाए, एक दो बजे बाजार में चले, इसके पहले अपनी धुन में घर में कमरा बंद करके बैठ जाते थे, दो दो चार चार छः छः घंटा तक बाहर नहीं निकले, इनकी जो वाणी है उसमें ये जो फोर्स है, जो स्पिरिट है, वो तो देखने में आता है, यही कारण पर बहुत काम कर दिया। गुरुदेव का सत्समागम इतना नहीं मिला, इतना पुण्ययुग नहीं था, फिर भी अकेले अकेले गुरु की सहायता इतनी नहीं रही तो भी इतना जबरदस्त काम कर दिया गुरुदेव को इनकी वाणी से अक्षर देह से ये देह से आप समझते हैं मुंह की चेष्टा से, वैसे अक्षर देह से इतने भाव निकाले कि यह जीव अभी स्वर्ग में गया है, वहां से निकल कर झपट लगाएगा। झपट कहते हैं ना आप, उतनी झपट लगाएगा कि ये मनुष्य होकर उसी भव में वो मोक्ष में चला जाएगा। एक अवतार गुरुदेव ने ये भी कहा कि हमारे तो चार भव है, आज से चौथे भव में जब हम तीर्थंकर होंगे, दीक्षा ग्रहण करेंगे, नग्न दिगंबर तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं, उनके मुंह से ये वचन निकलता है कि नमः सिद्धेया, सिद्धों को नमनीया नमस्कार हो। अरिहंत का नहीं निकलता, सिद्ध का निकलता है, खुद ही अरिहंत होने वाले हैं ना, जगत गुरु है खुद ही, तो ये उच्चारण होता है दीक्षा के काल में कि नमः सिद्धेया। जब हम सिद्धों को नमस्कार करेंगे उसी वक्त हमारा नमस्कार उसको पहुंचेगा। ये कहा, देखिए ज्ञानियों को मान अपमान की कल्पना कभी नहीं होती, ये कल्पना मिथ्या दृष्टियों को बनी रहती है कि मेरा मान सम्मान है कि नहीं है। जानते हैं कि हमको ये पत्र में वगैरह में सदगुरु देवाज नमा ये तो लिखते हैं हेडिंग में, तो गुरुदेव के प्रति इतना उपकार व्यक्त करते हैं, बेहद अनंत तीर्थंकरों से भी अधिक। ऐसा कहने वाला अपने शिष्य को गुरु नमस्कार करता है, यही बात है। ये अलौकिक पुरुषों की, अलौकिक जीवों की, लोक के जीव नहीं रहे, अलौकिक है। लोक में तो अगर आप मुझे मानते हो नमस्कार करो, मैं आपको नमस्कार नहीं करूं, ऐसा होता है कि ये तो मुझे नमस्कार करने वाला है, मैं कैसे करूं। ये बात ज्ञानियों के बीच में गुरु शिष्य का दृष्टिकोण नहीं रहता, ये गौण हो जाता है। इसकी महत्ता को, पूज्यता को, पवित्रता को नमस्कार करते हैं। श्री राजचंद्र जी ने सुहाग भाई को नमस्कार किया, आपके चरण प्रत्यय मेरा नमस्कार स्वीकार करें, ऐसा लिखा है पत्र में, ऐसा लिखा है।
गुरु शिष्य को कर सकते
हैं? हाँ, गुरु शिष्य को करते हैं कि नहीं करते हैं। देखो
आश्चर्य लगता है, आश्चर्य लगता है,
आश्चर्य तो लगेगा, ये नई दुनिया है बिल्कुल, ये दुनिया ही कोई नई दुनिया है। ये आचार्य भगवान ने 143वीं गाथा में परमात्मा कहा के नहीं कहा, पक्षांति ग्रंथ वाले को कहा के नहीं कहा, हाँ तो खुद तो 60वें गुण स्थान में लिख रहे हैं, तो जो पक्षांति ग्रंथ हुआ वो चतुर्थ गुण स्थान वाला हुआ, क्या करेंगे।
दृष्टि से कहा
नहीं,
ये पर्याय दृष्टि है,
पक्षांति ग्रंथ दृष्टि से नहीं होता है, पर्याय में पक्षांति ग्रंथ हुआ है, द्रव दृष्टि से तो निगोद में भी था, उसमें तो नहीं किया। ये बात नहीं है, नमस्कार का व्यवहार पर्याय के साथ है, द्रव्य के साथ व्यवहार पर्याय से पर्याय का है, वहाँ द्रव्य के साथ व्यवहार नहीं है। ऐसा लगे कि मैं यह मैं हूँ, ऐसा बोलन का जोर बढ़ते बढ़ते विकल्पों से भी छुटकर अंतर में भीतर में उतर जाते हैं, ऐसे निर्विकल्प होने के पूर्व ऐसी दशा होती है, उसको कहते हैं कि ये मर्यादा में आ गया, ये सन्मुख हो गया, और सन्मुख होते ही भीतर में उतर जाते हैं, यही वर्णन आचार्य भगवान ने अपने शब्द में क्या है समझ चुका। संयम को पुण्य माना गया है, फिर असंयम सम्यक दृष्टि पूज्य कैसे हैं? संयम के विकल्प को पुण्य माना गया है, परमार्थ संयम वो पुण्य नहीं है। जो परमार्थ संयम है वो पुण्य नहीं है, ये तो पवित्रता है और पूज्य नहीं है। और ऐसा पारमार्थिक संयम जब उपयोग अंतर में जमता है उसी को ही कहते हैं।